एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उनका नाम सुनते ही जहन में आता है शालीनता, तेज बुद्धि और समाज पर एक पैनी मजेदार नजर। हम बात कर रहे हैं जेन ऑस्टिन की, एक ऐसी अंग्रेजी उपन्यासकार जिनकी कहानियां 200 साल बाद भी हमें गुदगुदाती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं और मतलब बिल्कुल अपनी सी लगती हैं।
बिल्कुल अपनी सी लगती हैं, बहुत सही कहा आपने।
जेन ऑस्टिन, जिनका जीवन रहा 1775 से 1817 तक, कहने को तो एक शांत, ज्यादातर गांव में बीता जीवन, पर उनकी कलम में वो जादू था जिसने रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में छुपी इंसानी फितरत और समाज की परतों को खोल कर रख दिया। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उनकी दुनिया, उनके दौर और उनकी लिखाई की कुछ गहराइयों को समझें। ऐसा क्या खास था उनमें?
बिल्कुल, और ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि ऊपरी तौर पर उनका जीवन भले ही शांत लगे, लेकिन जिस दौर में वो जी रही थीं, वो काफी उथल पुथल भरा था। जॉर्जियन इंग्लैंड, मतलब 18वीं सदी का अंत और 19वीं की शुरुआत। सोचिए, 1775 में उनका जन्म हुआ, जब अटलांटिक के दूसरी तरफ अमरीका अपनी आज़ादी का बिगुल बजा रहा था, और फिर कुछ ही साल में फ्रांसीसी क्रांति ने तो पूरे यूरोप के सोचने का ढंग ही मतलब बदल दिया।
हाँ, ये तो बड़ी घटनाओं का दौर था, लेकिन उनकी कहानियों में तो ज्यादातर घरेलू माहौल, पार्टियां, रिश्ते, शादियों की बातें होती हैं। इस बाहरी उथल पुथल का उनकी लिखाई पर क्या असर दिखता है? कुछ है ऐसा?
हाँ है, सीधा असर शायद ना दिखे, लेकिन पृष्ठभूमि में ये तनाव हमेशा मौजूद रहता है। जैसे नेपोलियन के साथ जो युद्ध चल रहे थे 1803 से 18, उनका जिक्र आता है। नौसेना के अफसर उनके किरदारों में शामिल होते हैं।
अच्छा।
जिनके आने जाने से समाज और संपत्ति पर असर पड़ता है, और वो जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद ब्रिटेन में बहस छिड़ी थी ना, परंपरा, समाज की ऊंच नीच, व्यक्ति की आजादी,
हाँ हाँ
उसकी झलक उनके किरदारों के मन के द्वंद्व में दिखती है कि अपनी ख्वाहिशें पूरी करें या समाज के नियमों का पालन करें, ये कश्मकश दिखती है।
अच्छा, और उस समय का अंग्रेजी समाज कैसा था? आपने ऊंच नीच की बात की, वो थोड़ा और बताएंगे?
हाँ, बहुत सख्त नियम थे। जमीन वाले जो कुलीन वर्ग थे उनका बोलबाला था। महिलाओं के लिए तो शादी सिर्फ सामाजिक नहीं, बल्कि अक्सर मतलब आर्थिक मजबूरी भी होती थी। आपका रुतबा, आपका खानदान यही तय करता था कि आप किससे मिल सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं। ये सारी चीजें ऑस्टिन के उपन्यासों का कैनवस बनाती हैं, जिस पर वो अपनी कहानियां बुनती हैं।
समझ गई। और साहित्यिक माहौल, क्या उस समय सब उन्हीं की तरह लिख रहे थे या कुछ अलग था?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, यही तो ऑस्टिन की खासियत उभरती है। उस वक्त एक तरफ पुराने दिग्गज थे, जिन्हें ऑगस्टिन क्लासिक्स कहते हैं, पोप, स्विफ्ट जैसे लेखक जो तर्क और व्यंग्य पर जोर देते थे।
अच्छा।
दूसरी तरफ रोमांटिसिज्म की लहर उठ रही थी, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज जैसे कवि जो भावनाओं, प्रकृति और व्यक्ति की आजादी के गीत गा रहे थे।
और वो डरावनी कहानियां भी तो थीं।
हाँ हाँ, गॉथिक नॉवल भी खूब चल रहे थे, रहस्य, रोमांच और थोड़ी डरावनी कहानियां जैसे एन रैडक्लिफ लिखती थी।
बाप रे, इतने सारे अलग अलग अंदाज, तो ऑस्टिन कहाँ फिट होती थी
कुछ
इनमें?
कहीं फिट नहीं होती थी, यही उनकी खासियत थी। उन्होंने अपना अलग रास्ता बनाया, वो यथार्थवादी थी, उनका ध्यान किरदारों के मन पर, उनकी सोच और भावनाओं पर था। उन्होंने गॉथिक नॉवेल्स की जो बनावटी बातें थीं उनका मजाक भी उड़ाया, जैसे नॉर्थहैंगर एबी में दिखता है।
अच्छा।
लेकिन उन्होंने 18वीं सदी की जो नैतिक गंभीरता थी उसे भी बनाए रखा। वो भावनाओं को अहमियत देती थीं, लेकिन तर्क और समझदारी के साथ, मतलब एक संतुलन था।
तो ये था माहौल जिसमें जेन ऑस्टिन लिख रही थीं। अब जरा उनके अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। कहाँ पली बड़ी, कैसी थीं वो?
उनका जन्म हैम्पशायर के एक छोटे से गांव स्टीवेंटन में हुआ, एक पादरी के घर। पिता जॉर्ज ऑस्टिन पढ़े लिखे इंसान थे, पढ़ाते भी थे। माँ कैसेंड्रा ले थोड़े ऊंचे खानदान से थीं और उनमें दुनियादारी की समझ खूब थी, ऐसा कहते हैं। जेन 8 भाई बहनों में 7वीं थीं।
8 भाई बहन, तो घर का माहौल बड़ा जिंदा दिल और पढ़ने लिखने वाला रहा होगा।
हाँ बिल्कुल, घर में नाटक खेले जाते थे, किताबें पढ़ी जाती थीं, बहसें होती थीं। उनकी बड़ी बहन कैसेंड्रा उनकी सबसे करीबी दोस्त थी, जिंदगी भर का साथ रहा उनका।
और पढ़ाई लिखाई, स्कूल वगैरह गई?
औपचारिक पढ़ाई तो ज्यादा नहीं हुई, कुछ समय ऑक्सफोर्ड और रीडिंग में बोर्डिंग स्कूल में रहीं, लेकिन असल पढ़ाई घर पर पिता की लाइब्रेरी से हुई। वो खुद भी खूब पढ़ती थी।
अच्छा, मतलब सेल्फ लर्निंग ज्यादा थी। और लिखना कब शुरू किया उन्होंने?
बहुत जल्दी, किशोरावस्था में ही उन्होंने घरवालों के मनोरंजन के लिए मज़ेदार कहानियाँ, छोटे नाटक और उस समय के नॉवेल्स की पैरोडी लिखनी शुरू कर दी थी।
पैरोडी? अच्छा।
हाँ, इन्हें जुवेनेलिया कहते हैं। यहीं से उनकी वो पैनी व्यंग्य वाली शैली निखरनी शुरू हुई जो बाद में उनकी पहचान बनी।
तो यहीं से शायद उनके सबसे बड़े साहित्यिक योगदान की नींव पड़ी होगी। क्या कहेंगे आप, उनका सबसे अहम योगदान क्या माना जाता है?
मेरे ख्याल से दो तीन चीजें बहुत खास हैं। पहली, उन्होंने घरेलू दुनिया को, जिसे अक्सर मतलब अदना समझा जाता था, साहित्यिक मंच पर इज्जत दिलाई। वो खुद मजाक में कहती थी ना कि वो हाथी दांत के छोटे से टुकड़े 2 इंच चौड़े पर काम करती हैं।
हाँ हाँ, वो मशहूर बात।
यानी बहुत सीमित दायरे में, लेकिन उस छोटे दायरे में वो इंसानी रिश्तों और भावनाओं की इतनी बारीक नक्काशी करती थी कि वो कमाल का है। उन्होंने दिखाया कि बैठक खानों और बगीचों की आम बातचीत में भी जीवन के बड़े नाटक और नैतिक सवाल छुपे होते हैं।
ये तो दिलचस्प बात है। और लिखने के तरीके में कुछ खास, कोई नई तकनीक?
हाँ बिल्कुल, उनकी एक तकनीक लाजवाब है, मुक्त अप्रत्यक्ष कथन, यानी फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स।
फ्री इनडायरेक्ट? क्या
फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स? ये सुनने में भारी लगता है पर है बड़ा मजेदार। इसमें लेखक हमें किरदार के मन की बात बताता है लेकिन अपनी आवाज में, जैसे कोई दोस्त हमें धीरे से बता रहा हो कि वो क्या सोच रहा है, शायद थोड़ी चुटकी लेते हुए।
अच्छा, तो मतलब किरदार की सोच भी पता चलती है और लेखक का नजरिया भी?
बिल्कुल, इससे किरदार का मन भी पता चलता है और लेखक की टिप्पणी भी आ जाती है, अक्सर व्यंग के साथ। एम्मा की पहली लाइन याद है? एम्मा वुडहाउस सुंदर, चतुर और अमीर।
हाँ।
ये हमें एम्मा के बारे में बताता है पर आवाज थोड़ी व्यंगात्मक है, जो शायद एम्मा की नहीं लेखक की है। इससे गहराई और व्यंग दोनों आते हैं।
वाह, ये तो कमाल की तकनीक है। और उनके डायलॉग्स, सुना है वो भी बड़े जानदार होते हैं?
अरे बिल्कुल, वो उस जमाने के पढ़े लिखे अंग्रेजी समाज की बातचीत को हूबहू पकड़ लेती थी। कौन कैसे बोलता है, इसी से उसका किरदार, उसकी सोच, उसका समाज में स्थान सब पता चल जाता है।
कोई उदाहरण?
सोचिए मिस्टर कॉलिन्स की वो चापलूसी भरी बातें या मिस बेट्स की वो कभी न रुकने वाली बकबक। डायलॉग से ही कहानी आगे बढ़ती है, किरदार खुलते हैं, बहुत स्वाभाविक लगते हैं वो।
सही कहा। और उनकी हीरोइनें एलिजाबेथ बेनेट, एम्मा वुडहाउस, एनी एलियट, ये भी तो काफी अलग थीं उस जमाने के हिसाब से।
यकीनन, वो सिर्फ सुंदर और सुशील गुड़िया नहीं थीं, वो बुद्धिमान थीं, मजाकिया थीं, उनमें नैतिक समझ थी, लेकिन हाँ वो गलतियां भी करती थीं। वो अपने दुनिया की बंदिशों से टकराती थीं, अपने लिए सोचती थीं। वो सिर्फ किसी हीरो के इंतजार में नहीं बैठी रहती थीं, बल्कि खुद अपनी पहचान गढ़ने की कोशिश करती थीं।
तो कुल मिलाकर ऑस्टिन ने आम जिंदगी में गहराई खोजी, लिखने के नए तरीके इस्तेमाल किए और ऐसी महिला किरदार रची जो सोचने वाली थीं। चलिए अब उनकी कुछ खास किताबों पर बात करते हैं। 6 उपन्यास पूरे किए उन्होंने, है ना?
जी हाँ, 6 पूरे उपन्यास। पहला छपा 1811 में, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। इसमें दो बहनें हैं, एलिनॉर जो समझदारी सेंस से काम लेती है और मैरियन जो जज्बातों में बह जाती है।
सेंस एंड सेंसिबिलिटी, हाँ।
ये दिखाता है कि कैसे उस समाज में महिलाओं के पास विकल्प कम थे और उन्हें समझदारी और भावना के बीच संतुलन साधना पड़ता था, खासकर जब बात शादी और आर्थिक सुरक्षा की हो।
और फिर आया उनका सबसे मशहूर उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813। एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी की कहानी तो शायद सबने सुनी होगी या देखी होगी।
हाँ, ये आज भी सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसकी खासियत है कि कैसे दो लोग अपने पूर्वाग्रह प्रेजुडिस और अभिमान प्राइड को छोड़कर एक दूसरे को समझते हैं। इसमें सामाजिक व्यंग भी कमाल का है। मिस्टर कॉलिन्स जैसे चापलूस और मिसेस बेनेट जैसी अपनी बेटियों की शादी के लिए उतावली माँ के किरदारों के जरिए।
वो पहली लाइन भी तो है ना इसकी?
हाँ, वो तो अमर हो गई है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि अकेले अमीर आदमी को पत्नी की जरूरत होती है। इसमें कितना गहरा कटाक्ष है समाज की सोच पर। यह असल में खुद को जानने की कहानी है दोनों मुख्य किरदारों के लिए।
इसके बाद आया मैंसफील्ड पार्क 1814, जो कहते हैं थोड़ा गंभीर है, पहले वालों से अलग।
हाँ, इसका मिजाज थोड़ा संजीदा है। नायिका फैनी प्राइस एक गरीब रिश्तेदार है जो अपने अमीर रिश्तेदारों के यहाँ पलती है। यहाँ नैतिकता और दुनियावी चमक धमक के बीच का तनाव ज्यादा है। इसमें गुलामी प्रथा से कमाए गए धन का भी हल्का सा इशारा है, जो उस दौर की सच्चाई थी और ऑस्टिन ने उसे नजरअंदाज नहीं किया।
अच्छा, ये बात तो कम पता थी। फिर एमा 1815, जिसके बारे में आपने बताया कि उसमें वो खास लेखन तकनीक फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स का इस्तेमाल है।
जी एमा, तकनीकी रूप से इसे कई लोग उनका शिखर मानते हैं। एमा वुडहाउस, जो सुंदर, चतुर और अमीर है, लेकिन उसे लगता है कि वो सबकी जोड़ियां बना सकती है, और इसी कोशिश में वो बहुत कुछ गड़बड़ कर देती है।
हाँ, वो मैच मेकिंग करती है।
बिल्कुल, ये खुद को धोखा देने से लेकर खुद को समझने तक का सफर है। मुक्त और प्रत्यक्ष कथन का इसमें बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। हम एम्मा के दिमाग में ही घूमते रहते हैं ज्यादातर।
और आखिर में वो दो उपन्यास जो उनकी मृत्यु के बाद छपे, पर्सुएजन और नॉर्थहैंगर एबी 1817।
पर्सुएजन को उनका सबसे परिपक्व और भावनात्मक उपन्यास माना जाता है। नायिका एनी इलियट 27 साल की है, जिसे उस जमाने में काफी उम्रदराज माना जाता था शादी के लिए।
27 साल, हाँ, उस समय के हिसाब से तो ज्यादा ही थी।
बिल्कुल, ये प्यार में दूसरे मौके, अफसोस और सब्र की कहानी है। इसमें कैप्टन वेंटवर्थ का खत बहुत मशहूर है, बहुत भावुक। और नॉर्थहैंगर एबी, जो असल में लिखा पहले गया था, वो गॉथिक नॉवेल्स का मजेदार मजाक उड़ाता है। एक भोली लड़की कैसे दुनिया को किताबों के जरिए देखती है और फिर असलियत से रूबरू होती है।
तो हर उपन्यास का अपना एक अलग रंग है, अपनी एक अलग दुनिया। अगर हम ऑस्टिन की तुलना उस समय के दूसरे बड़े लेखकों से करें, जैसे वो रोमांटिक्स थे वर्ड्सवर्थ, या फिर वॉल्टर स्कॉट, जो ऐतिहासिक उपन्यास लिखते थे।
हाँ, ये तुलना जरूरी है उनकी जगह समझने के लिए। जहाँ बाकी लोग बड़ी बड़ी बातों, जुनून, इतिहास, प्रकृति की भव्यता, अलौकिक घटनाओं पर लिख रहे थे, ऑस्टिन का ध्यान इंसानी रिश्तों की बारीकियों, रोजमर्रा की जिंदगी के ड्रामा और किरदारों के मन पर था।
मतलब स्केल अलग था बिल्कुल।
हाँ बिल्कुल, वो भव्यता की जगह सूक्ष्मता पर काम कर रही थीं। उनका व्यंग्य और मनोवैज्ञानिक समझ उन्हें बिल्कुल अलग खड़ा करते हैं। उन्होंने साबित किया कि महान साहित्य लिखने के लिए असाधारण विषय होना जरूरी नहीं है, आम जिंदगी में भी बहुत कुछ है।
और इसी वजह से शायद वो आज भी इतनी पसंद की जाती हैं। उनकी विरासत आज कैसी है? क्या तब भी उन्हें इतना ही पसंद किया जाता था?
नहीं, शुरुआत में तो उन्हें बहुत ज्यादा शोहरत नहीं मिली। हाँ, वॉल्टर स्कॉट जैसे कुछ समझदार लोगों ने उनकी प्रतिभा पहचान ली थी। कुछ ने आलोचना भी की, कहा कि उनका दायरा बहुत छोटा है, जैसे शार्लट ब्रॉन्टे ने।
अच्छा, शार्लट ब्रॉन्टे ने, ये तो बड़ी बात है। फिर वो इतनी मशहूर कैसे हुई?
धीरे धीरे विक्टोरियन जमाने में उनकी कद्र बढ़ी। उनके चाहने वालों का एक खास वर्ग बन गया, जिन्हें जेनाइट कहा जाने लगा।
जेनाइट?
हाँ। फिर 20वीं सदी में तो अकादमिक जगत ने उन्हें हाथों हाथ लिया। F.R. लीबीज जैसे आलोचकों ने उन्हें अंग्रेजी उपन्यास की महान परंपरा का हिस्सा माना। और फिर नारीवादी आलोचकों ने दिखाया कि कैसे वो चुपके से, अपने तरीके से, समाज के मर्दों वाले नियमों पर सवाल उठाती हैं।
और आज, आज के जमाने में उनकी क्या अहमियत है?
आज भी उनकी अपील जबरदस्त है। देखिए ना, प्यार, पहचान, पैसा, समाज का दबाव, ये मुद्दे तो हमेशा रहेंगे। उनकी भाषा का मजा, उनका व्यंग्य आज भी ताजा लगता है।
हाँ, ये तो है।
और पॉप कल्चर में तो वो छाई हुई हैं, अनगिनत फिल्में, टीवी शोज बने हैं।
हाँ, वो क्लूलेस फिल्म जो है वो एमा पर आधारित है ना?
बिल्कुल, और ब्रिजिट जोन्स डायरी, वो प्राइड एंड प्रेजुडिस से प्रेरित है।
तो वो आज भी जिंदा है, नए नए रूपों में। अरे वाह, ये तो कमाल है। उनकी कुछ बातें, कुछ लाइनें तो बहुत मशहूर है ना, जैसे वो पहली वाली।
हाँ बिल्कुल, कुछ तो जैसे कहावतें बन गई हैं, जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस की वो पहली लाइन। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि एक अकेला आदमी जिसके पास अच्छी संपत्ति हो, उसे पत्नी की तलाश होनी ही चाहिए। इसमें जो व्यंग्य है वो आज भी कितना सटीक लगता है ना समाज पर।
हाँ बिल्कुल, और वो जो उन्होंने अपनी कला के बारे में कहा था, हाथी दांत के टुकड़े वाली बात।
हाँ, अपने भतीजे को खत में लिखा था, हाथी दांत के छोटे से टुकड़े, 2 इंच चौड़े, पर जिस पर मैं इतने महीन ब्रश से काम करती हूँ, जो बहुत मेहनत के बाद थोड़ा प्रभाव पैदा करता है। ये दिखाता है कि वो अपनी कला को कितनी बारीकी से देखती थी, कितने धीरज से काम करती थी।
नॉर्थहैंगर एबी में भी एक मजेदार लाइन है उपन्यासों के बारे में, शायद हीरो कहता है।
हाँ, हेनरी टिलनी कहता है, वो व्यक्ति चाहे सज्जन हो या महिला, जिसे एक अच्छे उपन्यास में आनंद नहीं आता, उसे असहनीय रूप से मूर्ख होना चाहिए। ये उस समय में उपन्यास जैसी विधा का एक तरह से बचाव है, जब उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता था, बड़ा चंचल सा बचाव है।
और प्यार के बारे में एमा में मिस्टर नाइटली का वो डायलॉग है ना कुछ?
हाँ, वो कहते हैं एमा से, अगर मैं तुमसे कम प्यार करता तो शायद मैं इसके बारे में अधिक बात कर पाता। इसमें वो गहरी भावना और उसे जाहिर करने में समाज की बंदिशें, वो तनाव दिखता है।
लेकिन पर्सुएजन में तो कैप्टन वेंटवर्थ खुलकर इजहार करते हैं, वो पत्र बहुत मशहूर है।
हाँ, वो बिल्कुल अलग है। उनके खत की वो लाइन, तुम मेरी आत्मा को भेदती हो, मैं आधा पीड़ा में हूँ, आधा आशा में। ये ऑस्टिन के लेखन में सीधी तीव्र रोमांटिक भावना का एक दुर्लभ पर यादगार लम्हा है। लेकिन संतुलन हमेशा महत्वपूर्ण था उनके लिए। जैसा एलिजाबेथ बेनेट सोचती है प्राइड एंड प्रेजुडिस में। हो सकता है मैंने अपना दिल खो दिया हो, लेकिन अपना आत्मनियंत्रण नहीं, दिल और दिमाग का संतुलन, ये उनकी नायिकाओं का आदर्श रहता है अक्सर।
क्या बात है, ये तो बहुत दिलचस्प बातें हैं। क्या जेन ऑस्टिन के बारे में कुछ और ऐसी रोचक बातें हैं जो लोग कम जानते हैं, कुछ अनसुनी सी?
हाँ, कई हैं। जैसे ये बात शायद बहुत लोग ना जानते हों कि उनके उपन्यास उनके जीते जी बिना नाम के छपे थे, बस लिखा होता था एक महिला द्वारा।
बाय अ लेडी?
हाँ।
सच में? गुमनाम?
हाँ, उनकी पहचान उनकी मौत के बाद ही उनके भाई हेनरी ने बताई।
अरे, और उन्हें जीते जी ज्यादा पहचान नहीं मिली थी फिर?
औपचारिक रूप से ज्यादा नहीं। सबसे बड़ा सम्मान शायद यही था कि एम्मा को प्रिंस रीजन को समर्पित करने का मौका मिला, जिन्हें वो खुद खास पसंद नहीं करती थी।
ये भी खूब रही। और कुछ?
एक बात और, जब वो कुछ साल बाद शहर में रहीं तो उनका लिखना लगभग बंद सा हो गया था। कहते हैं वो वहां खुश नहीं थी। इन काम किए, मैंसफील्ड पार्क, एमा, पर्सुएशन, और उन्हें विंचेस्टर कैथीड्रल जैसी बड़ी जगह में दफनाया गया, जो उस जमाने में उनके जैसी महिला लेखक के लिए काफी बड़ा सम्मान था।
उनके निजी जीवन में प्यार का कोई जिक्र आता है? शादी तो नहीं हुई थी उनकी?
एक हल्का सा जिक्र आता है टॉम लेफ्रॉय नाम के एक आयलिश युवक के साथ थोड़े समय के रोमांस का, पर वो बात आगे नहीं बढ़ी, शायद आर्थिक वजह थी। उन्होंने शादी नहीं की, जो उस समय महिलाओं के लिए आसान फैसला नहीं रहा होगा। उनकी मौत का कारण ठीक से नहीं पता, पर अंदाजा है कि एडिसन रोग या शायद हॉजकिंस लिम्फोमा रहा होगा। और हाँ, उन्होंने एक उपन्यास अधूरा भी छोड़ा, सैंडिटन।
तो एक शांत दिखने वाले जीवन के पीछे कितनी कहानियां, कितनी गहराई छिपी थी।
बिल्कुल, और यहीं से शायद आज की श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात निकलती है जो आप शुरू में पूछ रही थी।
हाँ,
ऑस्टिन ने अपना ध्यान छोटे बंधे हुए समाजों पर रखा और उनमें रहने वाले लोगों के निजी चुनावों पर, प्यार, नैतिकता, सुरक्षा।
हाँ,
आज हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, फैली हुई है, तकनीक ने सबको जोड़ दिया है, तो क्या ऑस्टिन की ये बारीक नज़र आज भी उतनी ही मायने रखती है? क्या समाज की उम्मीदों के बीच अपनी पहचान, अपना प्यार और अपनी ईमानदारी को बचाए रखने की जद्दोजहद माहौल बदल जाने के बाद भी कहीं ना कहीं वैसी ही नहीं है जैसी ऑस्टिन के किरदारों के सामने थी? ये सोचने लायक है।
ये सोचने वाली बात है वाकई। उनकी दुनिया छोटी थी, पर सवाल शायद वही थे जो आज भी हैं।
बिल्कुल।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।